आज बहुत शुभ महोत्सव है श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि श्री वैष्णवों के आचार्य हैं उनका आविर्भाव दिवस है आज। और ऐसा बताया जाता है श्री वैष्णव कहते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं लक्ष्मण के अवतार हैं, राम अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई और राम मतलब भगवान राम, तो नाम भी इस प्रकार से है। उनका बचपन का नाम भी लक्ष्मण था, लक्ष्मण दिशिका ऐसे करके। तो अभी थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये जो महाप्रभु की दंड भंग लीला है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव 1017 ईस्वी में हुआ था मद्रास के पास एक श्री वैष्णव परिवार में। और बचपन से ही उन जो हैं जब पैदा ही हुए थे तभी से उनके अंदर लक्ष्मण जी के जो हैं सिम्टम्स थे। तो एक महान वैष्णव ने, साउथ इंडियन नाम तो नहीं याद, लेकिन उन्होंने इनका नाम भी लक्ष्मण ही दिया था इसीलिए। और हमें तो शायद बहुत ही कम लोग जो है दक्षिण भारत की हिस्ट्री से फेमिलियर हों, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जो हैं भगवान के महान भक्त और एक एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जब रामानुजाचार्य बच्चे ही थे, बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, न्याय और वेदों में पारंगत जो है कर लिया था। और 16 वर्ष की उम्र में उनके विवाह हुआ और उन्होंने जो है एक मायावादी गुरु जिसका नाम था यादव प्रकाश उससे दीक्षा ग्रहण की। और जो है समय समय पे ये जो यादव प्रकाश थे ये शंकराचार्य के संप्रदाय में थे। और रामानुजाचार्य जब भी मायावाद सिद्धांत सुनते उनसे तो हमेशा उनका खंडन कर देते थे अपने ही गुरु के सिद्धांत का। तो यादव प्रकाश को लगता था कि ये, और बचपन वो भी समझ गए थे कि ये व्यक्ति जो आगे जाके शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करेगा और खंडन उसका प्रचार भी करेगा। तो और एक बार ऐसी लीला हुआ था कि जो है रामानुजाचार्य या श्री लक्ष्मण अपने गुरु यादव प्रकाश का मसाज कर रहे थे तभी उनका अन्य शिष्य कोई आया और उनसे कुछ संस्कृत में एक सिद्धांत पूछ सूत्र का मतलब जानना चाहा। तो उसका अर्थ था इस प्रकार से कि जो भगवान के नयन हैं या नेत्र हैं वो उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से वो जो बंदर के मतलब पीछे वाले भाग के समान है इस प्रकार से, भगवान के नेत्र उस पर लाल हैं। तो रामानुजाचार्य ने इस प्रकार कमेंट्री सुना तो उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें से कुछ आंसू जो हैं उनके गुरु यादव प्रकाश की पीठ पर गिरे तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, रामाचार्य के नेत्रों से अश्रु क्यों बह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ये जो कमेंट जो जो आपने इसका तात्पर्य दिया है या व्याख्या की है ये बहुत ही अपमानजनक है, भगवान की इस पर व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। तो उनको बहुत गुस्सा आया यादव प्रकाश को, बोले तुम शंकराचार्य की व्याख्या को जो है उसमें कमी देख रहे हो, तो अगर तुम ज़्यादा जानते हो तुम बताओ। तब उन्होंने जो है उसकी टीका करी कि किस प्रकार से भगवान के नेत्र उस प्रकार से हैं जिस प्रकार से एक कमल जिसके जो कि सूर्य के द्वारा अभी अभी खिला है और उसके पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र हैं। और इस प्रकार से तो वो यादव प्रकाश ने बोला कि नहीं, ये इसका मुख्य अर्थ नहीं है, ये इसका गौण अर्थ है, सेकेंडरी परपोर्ट, इट्स नॉट द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन। तो यादव प्रकाश फिर रामाचार्य ने शास्त्रों से उद्धृत करते हुए कहा कि नहीं, यही वास्तविकता में जो है प्राइमरी या मुख्य व्याख्या है उसकी। तो इस प्रकार से रामाचार्य जो है तो यादव प्रकाश को जो है जब बार बार ही रामाचार्य उनके शंकराचार्य की फिलोसफी के अंदर कमी निकालते थे तो उन्होंने सोचा कि एक बार रामाचार्य को मरवाने का प्लॉट बनाया, उन्होंने एक रचना षड्यंत्र किया कि उनको मारा जाए, लेकिन भगवान लक्ष्मी और नारायण ने स्वयं आके उनको जो है उनकी रक्षा करी। और बाद में रामानुजाचार्य जो हैं, और बहुत डिटेल में इनके बारे में हमको मिल जाता है शास्त्रों के अंदर, और फिर श्रीरंगम में जहाँ भगवान रंगदेव है वहाँ पे इनका मुख्य हेडक्वार्टर था रामानुजाचार्य का। और इन्होंने जो है बाद में संन्यास लिया जहाँ था मेरा ख्याल है महापूर्णा, इस प्रकार के एक भक्त से। एनी हाउ, एक और भक्त थे साउथ इंडिया के अंदर जिनका नाम था गोष्ठी पूर्णा। तो इनके गुरु महापूर्ण ने बोला कि आप जो हैं गोष्ठी पूर्ण के पास जाइए और वो पूरे इस एरिया में या इस दक्षिणी भारत के अंदर महान पंडित हैं, विद्वान हैं और भगवान के उन्नत भक्त हैं, तो आप उनसे जाके जो है मंत्र ग्रहण कीजिए। तो रामाचार्य गए गोष्ठी पूर्ण के पास और उन्होंने बोला कि मैं आपसे भगवान का मंत्र चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ करके टाल दिया उन्होंने। तो रामाचार्य बड़े थोड़े हतोत्साहित हुए। लेकिन एक बारी जो भगवान रंगनाथ की उत्सव चल रहा था और भगवान रंगनाथ को बाहर लेके आ रहे थे, तो उस भगवान रंगनाथ के एक महान पुजारी एक पुजारी ने को भगवान ने आदेश दिया और उस पुजारी ने इन गोष्ठी पूर्ण को जो है बोला कि रामानुजाचार्य जैसा कोई भक्त नहीं है भगवान का, कृपया करके आप उसे जो है ये मंत्र प्रदान कीजिए और ये रंगनाथ जी का आदेश है। तो तब पर भी गोष्ठी पूर्ण बोले कि नहीं, ये मंत्र तो जो है बहुत ही केवल वही जप सकते हैं जो बहुत ही उन्नत हों या शुद्ध हों, बिल्कुल जिनके अंदर रत्ती भर भी भौतिक इच्छा नहीं है उन्हीं को मिलना चाहिए। तो उस पुजारी ने बोला कि नहीं, रामानुजाचार्य जो है बिल्कुल सरल शुद्ध हृदय के हैं और भगवान रंगनाथ का आदेश है। तब पे गोष्ठी पूर्ण रिलक्टेंट थे उनको देने के लिए मंत्र। तो फिर रामानुजाचार्य ने उनको अप्रोच किया, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो टाल देते थे। ऐसे 18 बार ही टाल दिया रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य जब इतने बार टाल दिए गए तो बहुत दुखी हुए और आके रोने लगे और उनको लगा कि उनके जीवन में कोई लक्ष्य कोई मतलब नहीं है। तो जब अन्य भक्तों ने आके गोष्ठी पूर्ण को ये बताया रामानुजाचार्य की स्थिति, तो उन्होंने रामानुजाचार्य को बुलाया और बोला कि ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ तुमको, इससे आप भगवान को भी जीत सकते हो या भगवान के वैकुंठ लोक में जो भी जाप करेगा वो चले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये मंत्र ऐसे किसी व्यक्ति को ना मिले जिसके अंदर थोड़ी भी टिंज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जिसके थोड़ी भौतिक इच्छा है, उसको मंत्र नहीं मिलना चाहिए। तो रामाचार्य ने बोला ठीक है, पर इसको बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहिए आपको। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है और फिर गोष्ठीपुर ने उनको मंत्र दिया और रामानुजाचार्य ने उसका जाप किया और दिव्य आनंद उनको प्राप्त हुआ और वो जपते गए और दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। बार बार अपने गुरु या गोष्ठीपुर को प्रणाम करके फिर उनसे विदा ली और वो चले गए। जब गए तो श्रीरंगा मंदिर के पास में जब पहुंचे चल रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं जो है, और सब इस भौतिक दुनिया के अंदर जो है परेशान है, पीड़ित हैं इस भौतिक जगत से, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो रामानुजाचार्य ने जब सोचा तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपने दो प्रमुख शिष्यों को बुलाया और जोर जोर से वहाँ चिल्लाने लगे, मतलब आवाज करने लगे कि मैं जो हूँ आप सब आइए, आज मैं आप सबको ऐसा अमूल्य उपहार देने वाला हूँ जिसको पा करके आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ पर उनके शिष्य भी आ गए और अन्य भी जितने लोग थे वहाँ, सब बच्चे बूढ़े स्त्रियाँ सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर। और फिर रामानुजाचार्य उस मंदिर की ऊँची दीवार पर चढ़ गए और बोले कि मैं तुम्हें जो हूँ एक मंत्र देने वाला हूँ जिसको जप करके आपके जीवन में और कोई कष्ट नहीं रहने वाला, ऐसा है आपके आपका पूरा जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। और फिर वो जोर से चिल्लाए, ओम नमो नारायणाय, 8 अक्षर का ये मंत्र है। एक बारी बोले, फिर दूसरी बारी बोले, तिवारा भी बोले, तिवारा बोले, तीन बारी जब लोगों ने सुना, सब बिल्कुल ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी वैकुंठ में परिवर्तित हो गई है और सब बूढ़े बच्चे स्त्रियों जो कि भगवान रंगनाथ के पास आए थे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं रह गई। वो बहुत दिव्य आनंद से हुए और सभी इसका जप करते गए, हर्षोल्लासित होकर सब जाने लगे। और रामानुजाचार्य जो हैं अब रामानुजाचार्य उतर के कहाँ जाने लगे, गोष्ठी पूर्ण के पास दोबारा। और जब गोष्ठी पूर्ण के पास पहुंचे, तब तक गोष्ठी पूर्ण के पास एक खबर पहुंच चुकी थी कि रामानुजाचार्य ने ये मंत्र सबको दे दिया। तो गोष्ठी पूर्ण के सामने जब रामानुजाचार्य आए तो उनको बहुत गुस्सा आया। गोष्ठी पूर्ण को बोले कि इसलिए मैं तुम्हें मंत्र देना नहीं चाहता था, तुम इतने पापी हो कि तुमने मेरे मना करने पर भी तुमने जो मेरे को वचन दिया था उसको भंग कर दिया है और ये मंत्र तुमने सबको पब्लिक में दे दिया है। और फिर कहते हैं उन्हें, पता नहीं मैंने क्या पाप किया है कि जो मुझे तुम्हारा तुम्हारा मुंह देखना पड़ रहा है ऐसे करके, तो और अब मैं नरक में जाऊंगा तुम्हारा मुंह देखने से, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो, आपने जो मुझे मंत्र दिया इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे एक बार मेरे नरक जाने से, मेरे जैसे तुच्छ जीव के नरक जाने से इतने सारे लोग जो दुनिया में बद्ध हैं उनका उद्धार हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है कि मैं नरक में चले जाऊं ये मंत्र आपका वचन तोड़ करके, और ये सारे जो बद्ध जीव हैं ये मुक्त हो जाए। तो जैसे ही गोष्ठीपुर ने ये सुना तो तुरंत उनका गुस्सा ठक शांत हो गया और वो बोले कि मैंने तुम जैसा मैग्नानिमस या उदार व्यक्ति जो है आज तक नहीं देखा जो दूसरों के लिए खुद नरक जाने को तैयार है। बोले आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, है ना। और इस प्रकार से तो रामाचार्य इस प्रकार से उनका जो है भावना थी, और बहुत ही सभ्य थे, बहुत ही शील थे, बहुत ही नम्र थे, ऐसा है। तो ये एक कथा उनके बारे में है, असंख्य कथा उनके बारे में है। और प्रभुपाद जी ने भी रामाचार्य का बहुत जगह नाम कोट किया है। विशिष्ट अद्वैत उनकी फिलॉसफी थी जिसका उन्होंने प्रचार किया, और शंकराचार्य की जो अद्वैतवाद जो फिलॉसफी उसका खंडन किया, और बहुत तीव्रता से उन्होंने प्रचार किया। और उनके दो बहुत सारे मुख्य शिष्यों की कथा भी आती है, जैसे धनुर्दास, कुरेश, दाशरथी और अन्य बहुत सारे शिष्य जो हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो शिष्य थे वो बहुत शरणागत थे इनके प्रति, बहुत ही ज़्यादा। तो इनमें से एक शिष्य की हमें एक कथा बताए थे बस, वो है दाशरथी। तो ये जो दाशरथी शिष्य थे ये बहुत बहुत ही विद्वान थे और महापंडित थे और ब्राह्मण थे। तो इन्होंने एक बार रामानुजाचार्य के पास आके बोला कि आप मुझे गीता के इस श्लोक का अर्थ बता सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापे भी मोक्ष यिष्यामि मा शुचः। तो उन्होंने बोला, और ये दाशरथी थे ये रामानुजाचार्य के रिश्तेदार लगते थे, तो रामानुजाचार्य और हालांकि रामानुजाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि देखो, रिश्ते नाते में तुम मेरे परिवार के सदस्य लगते हो, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य की सारी कमियों को दूर करें, लेकिन क्योंकि तुम मेरे रिश्तेदार हो सकता है कि मैं तुम्हारा कुछ पक्षपात करूं और तुम्हारे अंदर दोषारोपण ना करूं, तो अच्छा है कि तुम इसका अर्थ जाओ के सीखो एक अन्य महा गोष्ठीपूर्ण से, गोष्ठीपूर्ण से जाके आप सीखिए। तो वो गोष्ठीपूर्ण के पास गए और उन्होंने बोला कि मेरे गुरु श्री रामानुजाचार्य ने ऐसा बोला है कि मैं आपसे जाके इस श्लोक का जो है अर्थ सीखूं, कृपया करके मुझे बताइए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। 6 महीने तक जो है वो गोष्ठीपूर्ण के साथ रहे, सेवा करते रहे, लेकिन गोष्ठीपूर्ण ने कुछ नहीं बोला उनको। तो जब 6 महीने हो गए तो उन्होंने देखा कि ये दाशरथी बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत हल्का सा उन्हें अपनी विद्वता का अहंकार था। तो फिर तो गोष्ठीपूर्ण ने उनको यही बोला, बोले जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिरेद मान मधा पुमान, मतलब ये श्लोक तो नहीं बोला लेकिन इस प्रकार से कि यदि हमारे पास बहुत अधिक विद्वता होती है या बहुत अच्छे गुण होते हैं तो कभी कभी उससे हमारे हमारे चरित्र में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जब ऐसा हुआ तो और फिर बोला कि आप जाओ और आपके जो गुरु हैं रामानुजाचार्य वही इस श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे। तो फिर रामानुजाचार्य के पास चले गए। जब वो रामानुजाचार्य के पास पहुंचे तभी उनकी बहन, रामानुजाचार्य की एक मतलब कजन बहन कह सकते हैं, अतुलई उनका नाम था, तो वो वहां पे आई हुई थी और वो रामानुजाचार्य को कहती हैं कि देखो, जब से मैं शादी हुई है तो मुझे घर में बहुत काम करना पड़ता है, कुएं से पानी लेके आना पड़ता है, सब बर्तन धोने पड़ते हैं, सब कपड़े धोने पड़ते हैं, सारा भोजन पकाना पड़ता है, और मैं बहुत सारा, मैं अकेले नहीं कर पाती इतने सारे लोगों का काम। और जब मैंने अपनी सास को इस प्रकार से बोला, ये इसका ये बताया कि ये तकलीफ आ रही है मुझे, तो मेरी सास ने उल्टा मुझे ही डांटा कि क्या तुम्हारे जो पिताजी हैं वो एक सेवक को साथ नहीं भेज सकते थे। तो मैं अपने पिताजी के पास गई और जब ऐसे उनको बोला तो उन्होंने आपके पास मेरे को भेज दिया। तो रामाचंद्र ने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एक ब्राह्मण मेरे पास में है, वो दाशरथी थे, बोले इनको ले जाओ साथ के अंदर और ये जो है आपके घर में पानी लेके आएंगे, भोजन पकाएंगे, बर्तन साफ करेंगे। और दाशरथी ने देखा कि अच्छा चलो मेरे गुरु की ऐसी इच्छा है, तो बिना चुपचाप अतुलई उनकी बहन के साथ चले गए। और इतने बड़े विद्वान थे, एक्चुअली इतने बड़े विद्वान थे कि उनका भी बहुत नाम था, ऐसा नहीं था कि खाली बहुत विख्यात विद्वान थे। तो फिर जो है वो घर चले गए, पानी लेके आते थे, भोजन पकाते थे, सब बर्तन साफ करते थे, 6 महीने तक ऐसे करते रहे वो। अपने गुरु के आगे जानते हुए। एक्चुअली रामाचार्य के सारे शिष्यों का ये एक पूरा कल्चर था, गुरु के प्रति शरणागति थी। दे हैड नो डिजायर एक्सेप्ट एक्सेप्ट देयर गुरुज डिजायर। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक यार ना करिया मने आशा। तो 6 महीने बाद उस गांव के अंदर एक ऐसी एक विद्वान पंडित आए, लेकिन वो निर्विशेषवादी थे, वो इम्पर्सनलिस्ट थे, मायावादी थे। तो वो जब भागवत में कथा कर रहे थे तो उसके निर्विशेषवाद जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। तो जब दाशरथी ने वो सुना तो उनसे सहन नहीं हुआ कि इस प्रकार से कोई जो है एक्चुअली मायावादी कृष्ण अपराधी। तो फिर दाशरथी ने जो है उनको बार बार ऑब्जेक्ट करते थे कथा के अंदर वो, कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस पंडित को बड़ा गुस्सा आ गया, तो बोले कि तुम एक साधारण रसोइये हो, जाके किचन में अपनी योग्यता दिखाओ, तुम यहाँ पे शास्त्रों में अपनी योग्यता कैसे दिखाओगे। तो फिर जो है दाशरथी ने उनको फिर एक प्रकार से चुनौती दी, या मतलब कह सकते हैं इस प्रकार सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सारे गांव वाले हैरान हो गए और वो पंडित भी हैरान हो गए कि उनके जो सिद्धांत सुन कर करके, उनके विद्वतापूर्ण वचन सुन के और एक्सप्लेनेशन सुन के, कॉमेंट्री सुन के। तो फिर वो पंडित ने भी शरण किया और सबने पूछा कि आप कौन है, आप एक साधारण रसोई तो नहीं है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने गुरु श्री रामानुचार्य का शिष्य दाशरथी हूँ। तो सबको इतना आश्चर्य हुआ कि इतने महान वैष्णव जो हैं, इतने महान विद्वान, वो हमारे बीच में रसोई काम कर रहे हैं। तो सब गांव वाले फिर रामानुचार्य के पास गए और बोले कि आपके शिष्य दाशरथी हैं और उनके अंदर एक रत्ती भर भी अहंकार नहीं है और वो इतनी नम्र सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। तो रामानुचार्य उनसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रैक्टिकली खुद जाके उनको लेकर के आए दाशरथी को, और फिर उन्होंने श्लोक का जो अर्थ उन्हें समझाया। तो ये एक कथा उनके शिष्य है दाशरथी की। इस प्रकार से ऐसे उनके गृहस्थ शिष्य थे धनुर्दास, ऐसे इनके एक और शिष्य थे जो पहले राजा थे जिनका नाम था कुरेश, और ये कुरेश जो है बाद में ये और इनकी पत्नी अंडल, कुरेश और अंडल दोनों जो है सारा राज्य छोड़ करके जो है श्रीरंगम आ गए और वहाँ भिक्षाटन करके रहते थे। और बाद में एक चोला डायनेस्टी के, चोला वंश के राजा श्री श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की, श्री गौणिताय की जय, श्री शारदाकिरण भगवान की जय, श्री कृष्ण मदनाम की जय। तो उन्होंने रामानुचार्य की ख्याति सुन करके उनको बहुत ईर्ष्या देश हुआ और उन्होंने रामानुचार्य को मरवाने का जो है प्लॉट किया। तो जब उस राजा के सेवक रामानुचार्य को पकड़ने के लिए आए तो इस कुरेश ने जो है अपने आप को रामाचार्य के रूप में ड्रेस कर लिया, और जब लोग आए, वो सेवक आए, तो उन्होंने बोला मैं ही रामानुचार्य हूँ, और वो शिष्य, वो सेवक उनको लेके चले गए कुरेश को, और वहाँ जाके उनको बहुत अपमान किया उनका, और बाद में उनकी जो है आंखें फोड़ दी, उनको ब्लाइंडेड कर दिया। लेकिन कुरेश फिर भी बहुत खुश थे अपने गुरु के लिए ऐसा बलिदान दे करके, और रामाचार्य को पता लगा। लेकिन समहाव ये कुरेश जो है कुछ समय बाद समहाव श्रीरंगा वापस पहुंच गए। थोड़े दिनों बाद उस राजा का नाश हो गया और फिर रामाचार्य की कृपा से कुरेश की आंखें वापस आ गई। ऐसा है तो ये जो सेक्रीफाइजिंग स्पिरिट है श्री संप्रदाय के अंदर और विशेषकर रामाचार्य शिष्यों के अंदर, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि श्रीपाद रामाचार्य से कि हमारे अंदर भी जो है हमारे गुरुजनों के प्रति स्पर्श शरणागति हो। श्रीपाद रामानुचार्य की जय। श्री रामानुचार्य आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। अब एक और बहुत ही दिव्य लीला है चैतन्य महाप्रभु की। उनसे भी ज्यादा नित्यानंद प्रभु की लीला है ये, और अभी हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 5 साक्षी गोपाल की लीलाएं। इसके बाद सिर्फ एक प्यार बचेगा और इस अध्याय का भी समापन होएगा और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, ये अध्याय शुरू होगा। तो पिछले बारी हिज होलीनेस दानवीर गोस्वामी महाराज ने श्लोक 141 लिया था, मैं 142 से 158 तक लूंगा क्योंकि ये पूरा लीला उसके लिए डिस्क्राइब्ड है, दंड भंग लीला। और जो है इसमें कईयों में तात्पर्य भी है, लेकिन फिर भी हम उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो श्लोक नंबर 142 से मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, और इससे पहले का बस इस प्रकार से है कि साक्षी गोपाल कटक में थे, वहां पे महापुरुष दर्शन, इनके दर्शन किए, नृत्य किया, नित्यानंद प्रभु ने कथा सुनाई उन्हें साक्षी गोपाल की। आप सबने कथा सुनी, वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण की। और फिर जो है महाप्रभु, और महाप्रभु की जगन्नाथपुरी तक यात्रा, इसका बहुत विस्तार से चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने जो है वर्णन किया है। इससे पिछली बार इसके जिता मित्र प्रभु ने वर्णन किया था। फिर महाप्रभु कटक से आते हैं भुवनेश्वर और वहां शिव जी का दर्शन करते हैं और लिंगराज महादेव का। और आप सबने कथा सुनी थी एकाम्र कानन कि किस प्रकार काशीराज का जो है शिव जी उनके साथ गए थे और भगवान का सूर्य चक्र ने काशीराज का वध किया और फिर शिव जी के पीछे भागा। और उसके बाद महाप्रभु भुवनेश्वर से निकले और पहुंचे एक जगह जिसको बोलते हैं कमलपुर, और कमलपुर पे नदी है भार्गी नदी, वहां महाप्रभु ने संन्यास स्नान किया और अपना संन्यास दंड किसको दिया, नित्यानंद प्रभु को। और अब इस प्रकार से आगे है। अब जो लीला आने वाली है इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में नहीं किया है, संभव वो सीधा इसके बाद स्किप कर जाते हैं और महाप्रभु पहुंच जाएंगे अठार नाला। तो ये जो इस जगह का पास टाइम है कमलपुर का, इस पास टाइम का से भार्गी नदी का स्नान वर्णन किया है लेकिन इस कमलपुर के पास टाइम का दंड भंग लीला का वर्णन नहीं किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। तो कपोतेश्वर देखी ते गेला भक्त गण संगे था नित्यानंद प्रभु कैल दंड भंगे, तीन खंड करी दंड दिला भसाइया भक्त संगे आइला प्रभु महेश देखिया। तो आप ध्यान पूरा सुनिएगा, जब ये पूरा लीला हो जाएगा तो तीन प्रश्न इसमें से हम पूछेंगे जो भक्त जो आगे भक्तिनाथ ठाकुर पूछते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उनके संन्यास दंड के तीन खंड करके भार्गी नदी में फेंक दिया। बाद में यह नदी दंड भंग नदी कहलाने लगी। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सतगुरु ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड का रहस्य बतलाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से संन्यास लिया था। सामान्यतया मायावादी सन्यासी एक दंड धारण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर श्री नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को तीन खंडों में तोड़ डाला और दंड भंग नदी में फेंक दिया। संन्यास आश्रम में चार विभाग होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस तथा परमहंस। सन्यासी केवल कुटीचक तथा बहुदक अवस्थाओं में ही दंड धारण कर सकता है, किंतु जब वह भ्रमण करते तथा भक्ति का प्रचार करते हुए हंस या परमहंस, ये हंस स्थिति को परिव्राजकाचार्य भी बोलते हैं, परिव्राजक या परमहंस अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे संन्यास दंड का परित्याग कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण श्री कृष्ण ये दोनों व्यक्तित्व श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में मिश्रित हैं, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष मानते हुए भगवान नित्यानंद ने उनकी परमहंस अवस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयमेव परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं, अतएव उन्हें संन्यास दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस दंड के तीन खंड करके उसे नदी में फेंक दिया। तो उस जो महाप्रभु का दंडा था संन्यास दंड, उसके तीन टुकड़े किए और भार्गी नदी के अंदर फेंक दिया, इसलिए नदी का नाम कहलाता दंड भंग नदी। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं कि संन्यास की चार अवस्थाएं होती हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक और परमहंस। कुटीचक अर्थात जब सन्यासी गांव के बाहर रहता है और उसके घर से उसका भोजन आता है। बहुदक होता है जब वो गांव के पास में रहता है और कुछ पर्टिकुलर घरों के अंदर वो जाके मधुकरी करता है। और परिव्राजक होता है जो भ्रमण करता है, भगवान पर जो है निर्भर रहते हैं और प्रचार करते हैं। और परमहंस वो होते हैं जो बिल्कुल इस भौतिक जगत से बिल्कुल ऊपर, जिनके बहुत ज्यादा नियम जो है कुछ है ही नहीं, वो तीनों गुणों से एक प्रकार से अतीत होते हैं। तो ये चार स्टेजेस हैं संन्यास की। तो जब व्यक्ति कुटीचक और बहुदक अवस्थिति से ऊपर उठ जाता है सन्यासी, तो उसके दंड धारण करना उसको ये इन फॉर्मेलिटीज की, एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। तो ये जानते हुए नित्यानंद उन्होंने दंड के तीन टुकड़े करके फेंक दिए। वैसे ही मायावाद संन्यास उन्होंने धारण किया था तो नित्यानंद को वो भी अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने एक दंडी संन्यास क्यों धारण किया है। तो तीन टुकड़े करके तो ये सबको शिक्षा दिया कि वैष्णव सन्यासी को क्या लेना चाहिए, त्रिदंड। और इसके बाद नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि वो भगवान स्वयं हैं और भगवान परम स्थिति के अंदर हैं, उन्हें दंड धारण करने की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक उत्तर जो है भक्तिनाथ ठाकुर इसके ऊपर तात्पर्य दे रहे हैं। आगे, दूर से ही जगन्नाथ के मंदिर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। देउल शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर का सूचक है। जगन्नाथपुरी का वर्तमान मंदिर राजा अनंग भीम ने बनवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर कम से कम 2000 वर्ष पूर्व बना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में मूल मंदिर के चारों ओर छोटे भवन नहीं बने थे, नहीं तब मंदिर के सामने का ऊंचा चबूतरा ही बना था। ये ऊंचा चबूतरा शायद वो होगा जो स्नान वेदी है जगन्नाथ भगवान की, यानी हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ 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 सारे भक्त भी भावाविष्ट हो गए और इस तरह भगवत प्रेम में मग्न होकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने तथा गाने लगे। हासे कांदे नाचे प्रभु हुंकार गर्जन तीन क्रोश पथ हैल सहस्र योजन। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते रोदन करते नाचते तथा भाव में आकर हुंकार कर रहे थे। यद्यपि मंदिर केवल 6 मील दूरी पर था किंतु उन्हें यह दूरी हजारों मील लगी। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि यह लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था और इस रास्ते को पहुंचते में 9 घंटे लगे क्योंकि इतना नृत्य करते हुए वह एक्सटेसी के अंदर थे, तो इसीलिए उनको इतना समय लगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में होते तो उन्हें एक एक क्षण 12 वर्ष के समान लगता। दूर से ही जगन्नाथ मंदिर को देखकर वे इतने भावाविष्ट हो गए कि उन्हें 6 मील का मार्ग हजारों मील लंबा लगा। चलिते चलिते प्रभु आयला आठार नाला तहां आसी प्रभु किछु बाह्य प्रकाशिला। इस तरह चलते चलते महाप्रभु आठार नाला नामक स्थान पर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से बातें करते हुए अपनी बाह्य चेतना व्यक्त की। तात्पर्य, जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार पर आठार नाला नामक एक पुल है जिसमें 18 मेहराबे हैं। 18 का अर्थ है 18। अभी भी है वो पुल, आठार नाला जगह है और हम सब जब बसते जाते हैं तो जगह देखते हैं। उसमें 18 ऐसे आर्चिस बने हुए हैं, एक पुल है एक प्रकार आठार नाला। तो महाप्रभु वहां पहुंचे और इसी आठार नाला पे जब सभी बंगाल से वैष्णव आया करते थे नवद्वीप से, तो महाप्रभु यहाँ आके उनको रिसीव किया करते थे। बेसिकली यहाँ से जगन्नाथपुरी शुरू होता है एक प्रकार से देखा जाए तो। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, नित्यानंद बले दंड हैलती न खंड। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आई तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा मेरा दंड लौटा दो। तो नित्यानंद ने उत्तर दिया उसके तो 3 खंड हो गए हैं। प्रेमा वेशे पड़ीला तुमी तोमारे धरिनु तोमा सहद से दंड ऊपरे पड़िनु। नित्यानंद प्रभु ने कहा जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा किंतु हम दोनों ही उस दंड पर गिर पड़े। इंग्लिश में कह रहे हैं कि यू आर इन एक्सटेसी, आई ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ यू, यू फेल अपॉन मी, आई फेल अपॉन एंड वी बोथ ऑफ अस फेल अपॉन दंडा। मतलब हम दोनों नृत्य कर, आप नृत्य कर रहे थे, मैं भी नृत्य कर रहा था, आप गिरने वाले थे, मैंने आपको पकड़ा और आप मेरे ऊपर गिरे और मैं दंड के ऊपर गिरा और हम दोनों दंड के ऊपर गिरे, दंड जो टूट गया। दुई जनार भरे दंड खंड खंड हैला सही खंड कहां पड़ीला किछु न जानिला। इस तरह वह दंड हम लोगों के भार से टूट गया, मैं नहीं जानता कि उसके तकड़े कहां गए। मोर अपराधे तोमार दंड हैला खंड ये उचित है मोर करतार दंड। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध के कारण टूटा है, अब आप जो उचित समझे मुझे दंड दें। तो नित्यानंद प्रभु एक बहुत जो है एक्चुअली नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। वो चैतन्य महाप्रभु से अपार प्रेम करते हैं, अनलिमिटेड लव ऐसा है। नित्यानंद प्रभु इज मेड अप ऑफ द लव ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो दिस दंड भंग पास्ट टाइम इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ नित्यानंद प्रभु लव। तो आगे बताते हैं अभी। शून्य किछु महाप्रभु दुख प्रकाशिला ईशत क्रोध करे किछु कहिते लागिला। जिस तरह से उनका दंड टूटा था उनकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले। महाप्रभु जानते तो थे कि हुआ क्या है कि नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के सामने महाप्रभु को चलती भी नहीं थी। अभी हम चैतन्य भागवत से कुछ वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं और महाप्रभु अनेकों बार नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु तो वही करते हैं जो उनको करना है, उनको करना नहीं है जो उनको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु जिससे प्रसन्न होंगे। और महाप्रभु बहुत प्रेम करते हैं नित्यानंद प्रभु से। जिस तरह से उनका दंड टूटा था उनकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास किए जाने को व्यर्थ समझते थे, इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दंड धारण करने की असुविधा समाप्त कर दी। उनको लगता था महाप्रभु दंड कैरे करेंगे, उनके संन्यास का क्या फायदा, परम भगवान है इसलिए तोड़ के फेंक दिया, इनको इतना कष्ट होगा दंड धारण करने का। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए क्रुद्ध हुए क्योंकि वे अन्य संन्यासियों को शिक्षा देना चाहते थे कि परमहंस पद प्राप्त करने से पूर्व दंड का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह देखकर कि ऐसे कार्यों से विधानों में ढील आ सकती है महाप्रभु स्वयं दंड धारण किए रहना चाहते थे किंतु नित्यानंद प्रभु ने उसे तोड़ डाला, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कुछ क्रुद्ध हुए। भगवद गीता में कहा गया है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। परमहंसों का अनुकरण करने का प्रयत्न करने वाले अनुभवहीन प्राकृत भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाह रहे थे। नीला चले आनी प्रमोर सबे कित हित कैला सबे दंड धन छिल तहा न राखिला। महाप्रभु थोड़े से क्रोधित होकर बोलते हैं, आप लोगों ने मुझे नीलाचल लाकर मुझ पर उपकार किया है, किंतु वह दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। तुम ही सब आगे यहां ईश्वर देखिते किमा अभी आगे याई नाया बस सहिते। अतएव आप सारे लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद भगवान जगन्नाथ दर्शन करने आओ, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। या तो आप पहले चले जाओ या मैं पहले चले जाता हूं, लेकिन साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पता नहीं और रास्ते में क्या क्या कर दोगे। आप मेरा एक ही दंड था, एक ही धन था संन्यास दंड, आपने उसे भी तोड़ डाला। और आप देखिएगा अभी सातवां अध्याय जब आएगा इसका, मध्य लीला का, तो महापु साउथ इंडिया के टूर जाने के लिए परमिशन लेंगे, तो कहते हैं कि आप परमिशन दो मुझे, अकेले मैं अकेला जाऊंगा। नित्यानंद तो ऐसे कैसे हो सकते हैं, आप अकेले कैसे जा सकते हो, किसी ना किसी एक को साथ लेके जाओ। तो और फिर कहते हैं कि मैंने पहले भी दक्षिण पूरे दक्षिण भारत के सारे तीर्थों का रास्ता मुझे मालूम है, इसीलिए मैं बेस्ट कैंडिडेट हूं मैं कि आप मुझे लेके जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं, पिछली बार मैं लेके आया था, तुमने मैं दंड तोड़ डाला, इस बार लेके जाऊंगा। पता उससे पहले जब संन्यास लिया था मैं वृंदावन जा रहा था, तुमने शांतिपुर भेज दिया, अभी जगन्नाथपुरी आया दंड तोड़ डाला, अब थोड़ी तुम्हें साथ लेके जाऊंगा मैं। और फिर और जगदानंद पंडित के बारे में बताते हैं, दामोदर पंडित के बारे में बताते हैं, और फिर महाप्रभु कहते नहीं मैं अकेले जाऊंगा। फाइनली एक ब्राह्मण काल कृष्णदास को साथ में लेके जाते हैं। तो मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम्हें यह आगे आमी सब पाछे या बना या बतो मार संगे। मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु आप आगे आगे चले और अन्यों को पीछे पीछे चलने की अनुमति दें, हम आपके साथ साथ नहीं जाएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों के साथ के आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभुओं चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सका। इहां के न दंड भांगे तेहो के न भांगाए भांगाए क्रोधे तिहो इहां के दोषाए। भक्तगण यह नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया, और ऐसा करने के बाद अब महाप्रभु क्रुद्ध क्यों हो गए। तो ये तीन क्वेश्चन है। महाप्रभु भगवान है, उन्हें मालूम था नित्यानंद प्रभु जो है दंड तोड़ देंगे, तो महाप्रभु ने उनको दंड दिया ही क्यों, दिया तो फिर तोड़ने क्यों दिया। तो महाप्रभु ने दंड दिया क्यों, उन्हें दंड दे दिया नित्यानंद प्रभु तोड़ा क्यों उसे, क्या मतलब है इसका। और तोड़ दिया तो महाप्रभु की इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, महाप्रभु भगवान है। अब उन्हीं की इच्छा से नित्यानंद प्रभु ने तोड़ा तो महाप्रभु आखिर क्रोधित क्यों हुए, है कि नहीं। तो अब इसका उत्तर कृष्णदास सेवराज गोस्वामी इस प्यार के अंदर दे रहे हैं कि दिस ऑल इज इनकंसीवेबल। व्हाट इज दिस, वो ये बोल रहे हैं महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल ड्यूटी तक नहीं समझ पाए। सो ही सेज, आप इन्हें पीछे धरा सकते हैं, दंड भंग लीला ए परम गंभीर सही बजे सही बुझे दुहार पदे यार भक्ति धीर। दंड भंग लीला ए परम गंभीर सही बुझे दुहार पदे यार भक्ति धीर। दंड भंग लीला ए परम गंभीर सही बुझे दुहार पदे यार भक्ति धीर। दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो। यह लीला है बहुत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो। तो समहाउ वी आर अनक्वालिफाइड। और मैंने जो दानवीर महाराज से ये प्रश्न पूछा, सो महाराज सेड इफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस पास्ट टाइम, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस पास्ट टाइम। कि जब महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद भी नहीं समझ पाए तो हमारे लिए भी समझ पाना आसान नहीं है। तात्पर्य, जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को वास्तव में समझता है वही उनके स्वरूप तथा दंडभंग लीला को समझ सकता है। सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित होने के लिए प्रेरित होकर भौतिक जीवन की आसक्ति त्याग कर दंड धारण किया। जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में व्यस्तता का सूचक है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम के विधानों को स्वीकार किया था, यह बिल्कुल स्पष्ट है। किंतु परमहंस अवस्था में दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से परमहंस थे, किंतु यह दिखलाने के लिए कि हर एक को जीवन के अंतिम काल में भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगने के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद जैसे परमहंस भी सदैव विधानों का पालन करते हैं, यही उनका हेतु था। महाप्रभु के नित्य सेवक नित्यानंद प्रभु को विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु को दंड धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए संसार को यह बतलाने के लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त विधानों का के ऊपर हैं, उन्होंने दंड के 3 खंड कर डाले। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दंड भंग लीला का इस प्रकार वर्णन किया है। थोड़ा सा हम जान सकते हैं आचार्यों की कृपा से, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये बता रहे हैं कि महाप्रभु ने दंड क्यों दिया उनको, कि उनको पता था कि दंड तोड़ डालेंगे। महाप्रभु दंड धारण क्यों करते थे, क्यों? क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि आने वाले समय के अंदर लोग संन्यास ग्रहण करें और विधि विधानों में ढील ना पड़ जाएं, वो हमेशा संन्यास दंड ग्रहण करें, और दंड का उसमें त्रिदंड होता है जो कि मनसा वाचा और कर्म से भगवान को सेवा में लगाने का पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाने का सूचक है। तो महाप्रभु दंड धारण करते थे, लेकिन जब महाप्रभु ने दंड दिया नित्यानंद प्रभु को, तो नित्यानंद प्रभु पूरे जगत को बताना चाहते थे कि महाप्रभु क्या है, परमहंस है, उनका इतना सीमित प्रेम है, इसलिए महाप्रभु को सन्यासी साधारण सन्यासी नहीं है, वो इन सब स्थितियों से जो है ऊपर है, इसलिए सन्यास उनको दंड धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसका तोड़ डाला। अब महाप्रभु क्रोधित क्यों हुए, क्यों इसलिए क्रोधित हुए, अंदर से तो बहुत प्रसन्न हुए वो, ही बिकेम वेरी हैप्पी इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली वो क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा होगा तो अन्य सारे भविष्य में जो लोग होंगे वो भी अपना दंड धारण करना छोड़ देंगे, और भी शायद कई कई नियमों के अंदर कमियां आनी ढील आना शुरू हो जाए, तो इसलिए महाप्रभु क्रोधित हुए। तो इस प्रकार से, और एक अन्य भक्त ने हमें बताया कि इसका एक बाह्य कारण ये भी है कि महाप्रभु जो अकेले जगन्नाथपुरी जा सकें और सारो मटाचार्य का उद्धार कर सकें, क्योंकि यदि महाप्रभु अकेले नहीं होते अभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर और सारे शिष्य साथ में होते तो महाप्रभु ना बेहोश होते, अगर होते भी तो सब भक्त उनको संभाल लेते, लेकिन क्योंकि वहां अकेले थे इसलिए सारो मटाचार्य के है वो घर गए। तो ये भी एक ऐसा है, इसीलिए पिछले श्लोक में बता रहे थे कि इसको ये इस श्लोक में बताया है कि अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो। तो ये सॉरी, एक दंड और एक के 3 टुकड़े कर दिए उन्होंने, उसको त्रिदंड बना दिया और फिर उसको भी फेंक दिया, वहां पर एक दंड दिया था केशव भारती जी से। तो क्योंकि मायावाद संप्रदाय में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था तो वे एक दंड धारण करते हैं इसलिए। तो इस प्रकार से, तो मैं सोचा कि कैसे दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो, तो जानना आवश्यक है उनके बारे में कुछ। तो वृंदावनदास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के महिमा के बारे में बहुत सारा वर्णन किया चैतन्य भागवत के अंदर, उसी में से कुछ वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे। मध्य खंड अध्याय 12 श्री नित्यानंद महिमा वर्णन, तो मैं उसमें से कुछ थोड़े से प्यार पढ़ने का प्रयास करूंगा। ये इंग्लिश में है, हिंदी में यथासंभव मैं अनुवाद करने का प्रयास करूंगा, कुछ मैं प्यार छोड़ रहा हूँ इसमें बीच में से। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो कृष्ण प्रेम से पूरित थे और वो बहुत ही विशेष लीलाएं करते थे, और वो हमेशा एक छोटे बालक के समान जो है आचरण किया करते थे। हालांकि वो महाप्रभु से लगभग लगभग 20 वर्ष बड़े थे उम्र के अंदर, ऑलमोस्ट ऐसा था, लेकिन फिर भी छोटे बालक के समान जो है वो करते थे, और जिसको भी मिलते बहुत मधुर वचन करते, वो हमेशा गाते रहते, नृत्य करते या हंसते रहते, हमेशा आनंद में रहते, कभी कभी जोर से हुंकार करते, और जब भी लोग उनको सुनते उनके हृदय में आश्चर्य जागृत होता। जब गंगा में बाढ़ आती मानसून के अंदर, तो नित्यानंद मालूम है क्या करते थे, और गंगा में बहुत सारे मगरमच्छ हुआ करते थे, और नित्यानंद प्रभु उस गंगा में कूद जाते थे और उसके अंदर तैरते थे और मगरमच्छों के बीच के अंदर, और कभी कभी मगरमच्छ के ऊपर जाके बैठ जाया करते थे, तो सब लोग बिल्कुल डर जाते और हाय हाय ऐसे चिल्लाने लगते, लेकिन नित्यानंद प्रभु कभी बाहर नहीं आते। कभी कभी नित्यानंद प्रभु जो है आनंद के अंदर दिव्य चेतना अपनी अंतरंग चेतना में चले जाते और बेहोश हो जाते। और आपको मालूम है कितने समय तक बेहोश रहते वो, कोई अंदाजा कितने समय तक बेहोश रहते होंगे एट अ स्ट्रेच, कोई अंदाजा? छह घंटे, आठ घंटे, बारह घंटे, चौबीस घंटे, तीन चार दिन तक वो बेहोश रहते थे नित्यानंद प्रभु। और तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार की अनेकों अनेकों अचिंत्य लीलाएं करते थे। और वृंदावन सागर कह रहे हैं कि यदि मेरे पास अनंत मुख भी हो तब भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। तो उनमें से एक लीला का वो वर्णन कर रहे हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास आए और जो है वो हंस रहे थे और उनके मुख पे बहुत ही सुंदर मुस्कान थी। और उनके वस्त्र क्या थे नित्यानंद प्रभु के? चार दिशाएं, अर्थात निर्वस्त्र थे वो। और उनके नेत्रों से जो है अविरल अश्रु जो है आनंद बह रहा था, अश्रु तो नहीं है। और बार बार वो हुंकार कर रहे थे कि नदिया के निमाई पंडित मेरे स्वामी हैं, नदिया इज निमाई पंडित इज माय मास्टर, जो निमाई नदिया के निमाई पंडित हैं ये मेरे क्या हैं, स्वामी हैं। और नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार देख करके चैतन्य महाप्रभु हंसे और उनके सुंदर रूप का उन्होंने दर्शन किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पगड़ी खोल के जो है नित्यानंद प्रभु को वस्त्र पहनाया। और फिर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनके दिव्य अंगों पर जो है चंदन का लेप किया और एक माल्यार्पण किया उन्हें। और फिर नित्यानंद प्रभु को एक बैठने के लिए आसन दिया और चैतन्य महाप्रभु प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे नित्यानंद प्रभु के बारे में, ऐसा है। और जो अन्य भक्त वहां पे थे उनको बोला, ओ डिवोटीज प्लीज हियर दीज प्रेयर्स, कृपया करके इन प्रार्थनाओं को सुने। तो हम वही दोहरा रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रार्थनाएं अर्पित की है। चैतन्य महाप्रभु बोले, आपका नाम नित्य आनंद है, आपका रूप नित्यानंद है, आप जो हैं इटर्नल, यू आर फुल ऑफ इटर्नल ब्लिस, जो आप नित्य आनंद उन्होंने व्याख्या किया इसका, से पूर्ण हो आप नित्यानंद हो क्योंकि आप भगवान स्वयं आप बलराम जी हो। बहुत आप आनंद में इधर उधर आप घूमते हो, आप कुछ भी आप जो है इधर उधर घूमते हो, इधर उधर खाते हो और बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य करते हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जहां आप आनंदित नहीं होते। तभी हम गाते हैं ना, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कि नित्यानंद प्रभु हमेशा परमानंद में रहते हैं। महाप्रभु आगे कह रहे हैं, कहां पे ऐसा एक मनुष्य है जो आपको समझ सके, ऐसा कोई भी नहीं है। आप शाश्वत हैं, आध्यात्मिक हैं और परम हैं, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण है उसी प्रकार से आप हो। और नित्यानंद प्रभु का हृदय बहुत बहुत ही सरल था और महाप्रभु का दिव्य प्रेम से था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कुछ कह रहे थे वो शांति सुन रहे थे और सहमति उसके अंदर दे रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वह कुछ भी जो है उसके प्रति प्रतिरोध नहीं कर रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपने कोपीन का एक, अपने वस्त्रों में से एक कोपीन आप मेरे को दे दीजिए, ये मेरी बहुत इच्छा है। और ये वचन सुन करके महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का कोपीन लिया और उसके टुकड़े कर दिए, उसके कई सारे वस्त्र जो हैं तारण। और जितने वैष्णव वहां उपस्थित थे उन सबको नित्यानंद प्रभु का कोपीन का एक एक वस्त्र जो है धागा या कह सकते हैं उन्होंने दिया। और चैतन्य महाप्रभु बोले, इस वस्त्र को आप सब लोग अपने सर पे बांध लीजिए। और बोले कि जो किंग्स ऑफ योगा, आई मीन जो योग में पारंगत हैं, वो भी इस वस्त्र को धारण करने के लिए लालायित रहते हैं, कोई साधारण व्यक्ति इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान विष्णु के प्रति किसी को भक्ति प्राप्त होती है। कृपा करके जान लीजिए कि नित्यानंद प्रभु के पास भगवान कृष्ण की समस्त शक्तियां हैं। नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है। नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण के संगी हैं, मित्र हैं, उनका शैया हैं, उनके आभूषण हैं और उनके किन्समैन, उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ तक कि वेद भी हैं, जो वेद शास्त्र हैं वो भी नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु सभी जीवात्माओं के पिता हैं, उनके रक्षक हैं और उनके मित्र हैं। उनका हर एक कार्य, नित्यानंद प्रभु का जो कार्य है, हमें चाहे भौतिक दृष्टि से अलौकिक लगे, वो अलौकिक है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम के अमृत से पूर्ण है, इसलिए हमें समझ नहीं आ सकता शायद। और नित्यानंद प्रभु की सेवा करने से किसी को भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्री नित्यानंद प्रभु की। तो फिर महाप्रभु कहते हैं, इसीलिए आदेश देते हैं कि बहुत श्रद्धा पूर्वक नित्यानंद प्रभु के इन कोपिन के टुकड़ों को अपने सिर के पास में बांध दो, उन्हें अपने घर लेके जाओ और उनकी क्या करो, बहुत ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनकी उस कोपिन की पूजा करो, ऐसा है। और भगवान के आदेश को ग्रहण करके सब भक्त बहुत आदर पूर्वक उस गोपिन के टुकड़े को जो है सर पे बांध लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे भक्तों सुनो, अब सब क्या करेंगे, जिस जल ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धोया है उस जल को सब ग्रहण करेंगे और उस चरणामृत की, उस पादोदगम की जो है भगवान व्याख्या कर रहे हैं, उसकी अब महिमा वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के चरणामृत की बोल रहे हैं कि ये चरणामृत जिसने नित्यानंद प्रभु के चरणों को धोया है, इसको पीने मात्र से भगवान कृष्ण के प्रति किसी की निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है और कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा प्राप्त हो सके। और वहां पर भगवान का आदेश प्राप्त करके सब भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के चरणामृत का पान किया और हर भक्त ने 5-5 गुना 10-10 गुना जो है पान किया। और नित्यानंद प्रभु तो बाह्य चेतना में थे नहीं, वे केवल मुस्कुराए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो है खुद बैठ गए और उस चरणामृत को इकट्ठा किया एक पात्र के अंदर। और फिर जब सबने उस जल को पी लिया तो महाप्रभु चिल्लाए, हरी 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 हरी। फिर एक व्यक्ति बोला, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है। दूसरा बोला, आज मेरे भौतिक जगत के सारे बंधन कट गए हैं। एक अन्य भक्त बोले, आज से मैं भगवान कृष्ण का भक्त बन गया हूं। दूसरा बोला, आज का दिन बहुत परम पवित्र है। तीसरा एक अन्य व्यक्ति बोले कि ये जो जल है बहुत ही मधुर है, अभी तक उसकी मधुरता मेरे मुख से समाप्त नहीं हुई है। और वृंदावनदास ठाकुर बता रहे हैं, जो नित्यानंद प्रभु का चरणामृत है बहुत ही शक्तिशाली है, केवल इसके पीने मात्र से जो है हर कोई व्यक्ति वहां क्या हो गया, पागल हो गया कृष्ण प्रेम में। कोई नृत्य करने लगा, कोई गाने लगा, कोई धरती पे लोट होने लगा, कोई हुंकारने लगा और एक बहुत ही जो है भगवान कृष्ण के नामों की गर्जना होने लगी और बहुत ही आनंद पूर्वक कीर्तन होने लगा और सब व्यक्ति बिल्कुल वहां पागल थे और सब भक्त नृत्य करने लगे। और उस नृत्य में तभी कौन आ गए बीच में, श्री गौरांग महाप्रभु हुंकार करते हुए, और सब खड़े हुए बाद में और वो वहां पर नृत्य करने लगे और फिर खड़े हुए साथ में कौन, श्री नित्यानंद प्रभु। और दोनों जो भाई हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, वो नृत्य करने लगे और सब भक्त नृत्य करने लगे। कुछ भक्त गाने लगे, कुछ लोटने लगे, कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ एक दूसरे की धूली अपने सर पे लगाने लगे और कुछ जो है एक दूसरे को आलिंगन करते हुए रोने लगे। वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, और बता रहे हैं कि वहां पे किसी प्रकार का कोई ऑ एंड रेवरेंस, कोई सीनियोरिटी जूनियरिटी नहीं रही। सेवक और मालिक सब एक साथ नृत्य कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक दूसरे का आलिंगन करने लगे और नृत्य करने लगे और नित्यानंद प्रभु के स्पर्श से पूरी धरती कांपने लगी और सब बहुत जोर जोर चिल्लाने लगे, हरी 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 हरी। और इस प्रकार से जो है सब भक्त जो है इन वैकुंठ के दो ईश्वरों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को के साथ करने लगे। पूरा दिन वो नृत्य करने लगे और फिर सब भक्त बैठ गए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार अपने हाथ से ताली बजाई और खुश होकर बोलने लगे, बोले कि जिसकी नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति है उसी को मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो सकती है। इवन शिव जी और ब्रह्मा जी भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की उपासना करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सब जो है नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में अपने प्रेम को जो है लगाइए। यदि कोई ऐसा भक्त है जो एक क्षण के लिए भी नित्यानंद प्रभु से नित्यानंद प्रभु से थोड़ी घृणा करता है वो मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। और जिसने नित्यानंद प्रभु का एक बार स्पर्श किया है भगवान कृष्ण उसका कभी बहिष्कार नहीं करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के वर्ड सुन के सब भक्त क्या बोलने लगे, जय 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 जय। फिर आगे वृंदावनदास ठाकुर श्रुति फल दे रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं, जो श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक इन लीलाओं को सुनता है निश्चित रूप से वो चैतन्य महाप्रभु को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करेगा। और जो इन इन लीलाओं का या इन तथ्यों का विस्तार पूर्वक नित्यानंद प्रभु के इन वर्णन का ध्यान पूर्वक महिमा का वर्णन कोई देखेगा तो उनके बारे में जान पाएगा। और फिर कह रहे हैं, एनीवन हु बिकम्स अवेयर ऑफ दीज ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बिकम वेरी फॉर्चुनेट, ही बिकम्स डियर टू लॉर्ड चैतन्य। यदि कोई नित्यानंद प्रभु की महिमा को जान जाता है तो बहुत ही सौभाग्यशाली है क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हो जाता है। श्रील वृंदावन ठाकुर की, श्री नित्यानंद प्रभु की। तो इसीलिए दंड भंग लीला ए परम गंभीर सही बुझे दुहार पदे यार भक्ति धीर, कि जो भक्ति में बहुत धैर्यवान है वही नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझ सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री दंड भंग लीला की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्री रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जस एक लास्ट चीज, आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है, वो लक्ष्मण के अवतार है और नित्यानंद प्रभु वही लक्ष्मण है, वही बलराम है। सो इन दैट वे देयर सम सिमिलैरिटी, वी कुड नॉट ग्लोरीफाई रामानुजाचार्य सो मच, बट हिज मास्टर और हिज जो उनके जो अंशी है उनका वर्णन हमने किया। नित्यानंद प्रभु की जय। आशा भक्तों बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।